एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
तो आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं जो जो सिर्फ एक कहानी नहीं है,
एक एहसास है कह सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, डेलिया ओवेंस की वेयर द क्रॉडैड्स सिंग।
ये किताब जब आई तो इसने मतलब दुनिया भर के पाठकों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था।
सही बात है,
लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या खास है इसमें? क्या ये एक मर्डर मिस्ट्री है
या एक प्रेम कहानी,
या फिर प्रकृति का कोई जीवंत दस्तावेज?
मुझे लगता है कि ये इन सब का एक अद्भुत संगम है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है।
और इसकी वजह शायद लेखिका की अपनी पृष्ठभूमि में छिपी है ना?
हाँ बिल्कुल, डेलिया ओवेंस कोई पारंपरिक उपन्यासकार नहीं थी, वो एक वन्यजीव विज्ञानी है, एक जूलॉजिस्ट।
अच्छा।
उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अफ्रीका के जंगलों में बिताया है, जानवरों के बीच।
और यहीं पर ये कहानी दिलचस्प हो जाती है। एक वैज्ञानिक जो जानवरों के व्यवहार को समझता है, वो इंसानी समाज पर इतनी गहरी कहानी कैसे लिख पाया?
शायद वो इंसानी समाज को भी एक इकोसिस्टम की तरह ही देख रही थी, जहां कुछ शिकारी होते हैं
और कुछ शिकार।
बिल्कुल, आज की हमारी चर्चा इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेगी।
तो चलिए शुरू करते हैं।
तो कहानी हमें उत्तरी कैरोलिना के एक दलदली इलाके में ले जाती है और एक साथ दो पटरियों पर चलती है।
दो टाइमलाइन मतलब?
हाँ, पहली है 1952 की, जहां हमारी मुलाकात होती है 6 साल की कैथरीन क्लार्क से,
जिसे दुनिया की क्या के नाम से जानेगी।
हाँ क्या, उसका बचपन किसी बुरे सपने जैसा शुरू होता है। पहले उसकी माँ घर छोड़कर चली जाती हैं,
फिर एक एक करके उसके भाई बहन,
और आखिर में उसका शराबी और हिंसक पिता भी उसे अकेला छोड़ जाता है।
10 साल की उम्र में वो उस विशाल जंगली दलदल में बिल्कुल अकेली।
तर्कना करना भी मुश्किल है।
एक तरफ वो दलदल का एक आदिम सौंदर्य है और दूसरी तरफ एक बच्ची का असहनीय अकेलापन।
समाज ने तो उसे कब का त्याग दिया था, स्कूल में बच्चों से मार्श गर्ल यानी दलदल की लड़की कहकर चिढ़ाते थे,
इसलिए वो स्कूल भी नहीं जा पाई।
सिर्फ एक दिन, उसके बाद उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। फिर प्रकृति ही उसकी माँ, उसकी शिक्षक, सब कुछ बन गई। समुद्री पक्षी उसके दोस्त थे, लहरों का संगीत उसकी लोरी।
और वो अपना गुजारा कैसे करती थी?
वो सीपियां इकट्ठा करके जंपिन नाम के एक नेक अश्वेत व्यक्ति को बेचती थी। वो किसी जंगली पौधे की तरह बिना किसी सहारे के उस दलदल में अपनी जड़ें जमा लेती है।
ये सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि जब इंसानी समाज आपको ठुकरा देता है तो प्रकृति आपको कैसे अपना लेती है।
सही कहा, लेखिका का वो वैज्ञानिक नजरिया यहाँ साफ दिखता है।
क्या का किरदार किसी इंसान से ज्यादा उस माहौल में ढले एक जीव की तरह लगता है,
और इसी अकेलेपन के अंधेरे में एक रोशनी की किरण बनकर आता है टैट वॉकर।
अच्छा,
वो पहला इंसान था जो उसे घृणा से नहीं बल्कि हमदर्दी और जिज्ञासा से देखता था।
वो उसे पढ़ना लिखना सिखाता है ना?
हाँ, और ये क्या की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो उसे जो सबसे कीमती तोहफा देता है वो है शब्द।
एक लड़की जो अब तक सिर्फ प्रकृति की भाषा समझती थी, अब इंसानों की दुनिया में दाखिल होती है।
वो खुद कहती भी है, मुझे नहीं पता था कि शब्दों में इतना कुछ हो सकता है।
तो यहीं से एक मासूम प्रेम कहानी की शुरुआत होती है।
हाँ, लेकिन इंसानी दुनिया जितनी जल्दी उम्मीद देती है उतनी ही जल्दी छीन भी लेती है।
टेट कॉलेज चला जाता है।
हाँ, और वापस आने का वादा करके लौटता नहीं है। उसे डर लगता है कि अनपढ़ जंगली क्या उसकी पढ़ी लिखी दुनिया में फिट नहीं हो पाएगी।
और इस धोखे से क्या का सबसे बड़ा डर सच हो जाता है
कि हर कोई जिसे वो प्यार करती है उसे छोड़कर चला जाएगा।
उसका दिल फिर से बंद हो जाता है।
सालों बाद कहानी में एंट्री होती है चेज एंड्रयूज की,
जो टेट से बिल्कुल अलग है।
बिल्कुल, कस्बे का अमीर मशहूर लड़का। वो उस सभ्य समाज का प्रतीक है जिसने क्या को हमेशा बाहरी माना।
शेज के लिए क्या एक ट्रॉफी की तरह थी।
हाँ, एक जंगली अछूती चीज जिसे वो जीतना चाहता है। वो उसे सपने दिखाता है, शादी का वादा करता है,
और प्यार की भूखी क्या उसके झांसे में आ जाती है।
लेकिन ये रिश्ता धोखे की नींव पर बना था। चेज पहले से ही किसी और से संगाई कर चुका होता है।
जब क्या को ये पता चलता है तो वो रिश्ता तोड़ देती है।
लेकिन चेज जैसे शिकारी आसानी से हार नहीं मानते। वो उसका पीछा करता है और एक दिन उस पर हिंसक हमला भी करता है।
तो ये दो पुरुष पात्र, ये सिर्फ प्रेम कहानी का हिस्सा नहीं है, ये दो अलग अलग दुनियाओं को दिखाते हैं।
हाँ, टेट का प्यार सिखाने वाला है जबकि चेज का प्यार हक जताने वाला।
लेकिन एक और रिश्ता है जो इन सबसे ऊपर है, जंपिन और उसकी पत्नी माबिल का।
बिल्कुल, जंपिंग और मैबिल, वो अश्वेत जोड़ा जो खुद समाज में हाशिए पर था, क्या के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे।
वे उसे बिना किसी शर्त के मदद करते हैं।
हाँ, कपड़े, खाना और सबसे बढ़कर मानवीय गरिमा। वो हमें बताते हैं कि परिवार खून से नहीं, करुणा से बनता है।
तो अब कहानी की दूसरी पटरी पर चलते हैं, साल 1969,
जहां से ये कहानी एक तनावपूर्ण मर्डर मिस्ट्री बन जाती है। 1969 में कस्बे के पुराने फायर टावर के नीचे चेज एंड्यूज की लाश मिलती है।
कोई सुराग नहीं,
कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई पैरों के निशान नहीं।
और जब कोई सबूत नहीं होता तो समाज अपनी कहानी गढ़ने लगता है।
हाँ, और शक की सुई घूम फिरकर एक ही इंसान पर टिक जाती है,
मार्श गर्ल।
बिल्कुल, वो लड़की जो सबसे अलग है, जिसे वे समझते नहीं और जिससे वे डरते हैं।
उनके लिए कहानी सीधी है, क्या और चेज का रिश्ता था, चेज ने धोखा दिया
और ईर्ष्या में जलती प्रेमिका में बदला ले लिया।
पुलिस भी इसी कहानी पर यकीन कर लेती है और क्या को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके लिए तो जेल की वो चार दीवारी दलदल के किसी भी खतरे से ज्यादा खौफनाक रही होगी।
हाँ, तो असल में ये मुकदमा चेज की मौत का नहीं, बल्कि मार्श गर्ल के खिलाफ कस्बे के सालों पुराने पूर्वाग्रह का था।
कोई सीधा सबूत तो था ही नहीं,
कुछ भी नहीं। सारी कहानी बस अंदाजों पर टिकी थी, जैसे चेज की जैकेट पे लाल ऊन के कुछ रेशे मिले थे
जो क्या की टोपी से मेल खाते थे।
हाँ, लेकिन ये सब परिस्थिति जन्य साक्ष्य थे।
तो अंत में क्या हुआ?
बिना किसी ठोस सबूत के जूरी को उसे निर्दोष करार देना पड़ा।
कानून की जीत होती है, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है?
नहीं, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अभी बाकी था।
अच्छा,
रिहा होने के बाद क्या दलदल में लौट जाती है? कुछ समय बाद टेटवी वापस आता है, वो माफी मांगता है और इस बार वे दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं।
एक शांत जिंदगी।
हाँ, क्या एक मशहूर प्रकृतिवादी बन जाती है, किताबें लिखती है और 64 साल की उम्र में अपने प्यारे दलदल में नाव पर ही उसकी शांति से मृत्यु हो जाती है।
एक खूबसूरत अंत, लेकिन इसमें मोड़ कहाँ है?
मोड़ उसकी मौत के बाद आता है। कई साल बाद जब टेड उसकी चीजें संभाल रहा होता है तो उसे एक गुप्त डिब्बा मिलता है। उस डिब्बे के अंदर उसे चेज का दिया हुआ वो शंख का हार मिलता है जो चेज की लाश से गायब था। और उसी के साथ मिलती है अमांडा हैमिल्टन के छद्म नाम से लिखी क्या की कविताओं की एक किताब।
और उसमें
टेट द फायरफ्लाई यानी जुगनू नाम की एक कविता पढ़ता है।
उसमें क्या लिखा था?
उसमें लिखा है कि कैसे मादा जुगनू अपने प्रकाश से नर को आकर्षित करती है और जब वो करीब आता है तो उसे मार डालती है।
तो इसका मतलब?
हाँ, उस एक पल में शीशे की तरह सब कुछ साफ हो जाता है। चेज को क्या नहीं मारा था?
ये तो पाठक को हिलाकर रख देता है।
ये हमें न्याय की परिभाषा पर फिर से सोचने पर मजबूर करता है। क्या वो एक कातिल थी?
या उसने बस वही किया जो प्रकृति का सबसे पुराना नियम है, आत्मरक्षा।
ये ईर्ष्या में की गई हत्या नहीं थी, नहीं, ये एक शिकारी से खुद को बचाने के लिए उठाया गया कदम था। जब चेज ने उस पर हमला किया तो क्या ने इंसानी कानून का इंतजार नहीं किया, उसने प्रकृति के कानून का पालन किया।
लेखिका की एक बहुत मशहूर पंक्ति है जो इस पूरी कहानी का सार है।
कौन सी?
दलदल मृत्यु के बारे में सब कुछ जानता है और इसे जरूरी नहीं कि एक त्रासदी के रूप में परिभाषित करे, और निश्चित रूप से पाप के रूप में तो बिल्कुल नहीं।
वाह, ये पंक्ति सब कुछ कह देती है।
ये सवाल उठाती है कि क्या कभी कभी प्रकृति के नियम इंसानी कानूनों से ज्यादा बड़े और ज्यादा सच्चे हो सकते हैं।
ये कहानी हमें सिखाती है कि अकेलापन और सामाजिक बहिष्कार किसी इंसान को कितना मजबूत और कितना खतरनाक बना सकता है।
और ये भी कि प्रकृति में जो शक्ति, सुंदरता और क्रूरता है, वही इंसान के दिल के अंदर भी मौजूद है।
बस उसे बाहर आने के लिए सही हालात की जरूरत होती है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।